शांताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मनं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्या पानीय सूय वसकंदर कंद मूलै हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है कृपया अपने मोबाइल फोन को आप बंद रखें ताकि वो कथा में बाधा ना दे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पर्वत की महिमा, जिसमें हम लौल्यम का महत्व समझ रहे हैं, और हमारे पिछले कई रविवारों से हम ये 6C फॉर्मूला, जिसका हमने पेयरिंग किया था इस हिसाब से, चॉइस वर्सेस चैलेंजेस, कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर, क्लैरिटी वर्सेस कंट्रीब्यूशन, तो अब तक हम चॉइस चैलेंजेस कमिटमेंट और कैरेक्टर इसकी चर्चा कर चुके हैं, और आज हम चर्चा करेंगे क्लैरिटी वर्सेस कंट्रीब्यूशन। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत पद्धति में एक स्पष्टता नहीं प्राप्त करते, तब तक हम योगदान अपना नहीं दे पाएंगे। जैसे अक्सर हम ये उदाहरण देते हैं कि यदि हम इस्कॉन की तुलना एक अस्पताल से करें तो हम सब मरीज के रूप में आए, तो एक मरीज का योगदान अस्पताल के लिए क्या है? डॉक्टरों को सेवा का मौका देना, तो हाँ वो मरीज अक्सर ये देखा जाता है कि जब उसके अंदर स्वास्थ्य के कुछ लक्षण दिखते हैं, बीमारी के लक्षण कम होते हैं, स्वास्थ्य के लक्षण दिखते हैं, हो सकता है वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ न हुआ हो, परंतु थोड़े बहुत स्वास्थ्य के लक्षण अब उस पर डॉक्टरों को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। बल्कि कई बार यह भी देखा जाता है कि डॉक्टर न होने के वजह से ये जो थोड़ा बहुत ठीक हुआ मरीज अन्य पीड़ित मरीजों की देखभाल करता है। तो इसलिए हमें, यदि हम ये कहें कि हम अस्पताल में आए हैं उपचार कराने, तो जिंदगी भर मरीज बनकर नहीं रहना है कि चलो अब इस्कॉन तो एक अस्पताल है, मैं एक मरीज हूं, तो इत्मीनान से अब बस बेड ऑक्यूपाई कर कर रखते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी का अर्थ है स्पष्टता। अब जब हम स्पष्टता की बात करते हैं तो मनुष्य होने के नाते हम जो भी कुछ हमारे इस मनुष्य जीवन में करते हैं, ये सारी चीजें यदि आप देखो, चाहे वो संबंध हो, वाणी हो, आदान प्रदान हो, हमारे विचार हो, जो हम निर्णय लेते हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, ये सारी चीजें क्या चाहते हैं हम इनमें? स्पष्टता चाहते हैं. वी वॉन्ट क्लैरिटी इन ऑल ऑफ दीज. वी वॉन्ट क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स, इन स्पीच, इन थॉट्स, इन एक्शंस, इन गोल्स एंड डिजायर्स एंड डिसीजंस. सब में हमें स्पष्टता चाहिए. स्पष्ट रूप से बताओ क्या चाहते हो. दो व्यापारी जब कोई डील भी करते हैं तो उसके अंदर उनको स्पष्टता चाहिए. कम से कम अगले से एक बार. पहले वो हुआ करता था ना, ट्रंक कॉल, जब आप ऑपरेटर को कॉल करो और ऑपरेटर आपको फोन लगा कर देता. तो ये वो जमाने की बात है जब ट्रंक कॉल का जमाना था. सेल फोन तो दूर की बात, ट्रंक कॉल का जमाना. तो पोपटलाल ने जमनालाल को ट्रंक कॉल लगाया. हुआ ये था कि जमनालाल को 1,00,000 रुपए पोपटलाल को देने थे. तो काफी अरसा बीत चुका था, तो पोपटलाल ने ट्रंक कॉल लगाया जमनालाल जी को. और जमनालाल जी, केम छो, कैसे हो? वहां से बस समाचार मिले कि सब कुशल मंगल है, इत्यादि इत्यादि. और बच्चे कैसे हैं? छुट्टियां शुरू हो गई? हाँ, छुट्टियां शुरू हो गई. और भाभी कैसी हैं? हाँ, भाभी भी ठीक हैं. ससुराल वाले सब ठीक हैं? हाँ. तो मैं वो 1,00,000 के विषय में पूछना चाह रहा था. तो पोपटलाल जी बोले, 1,00,000 के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? तो जमनालाल जी, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है कुछ. थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए. तो पोपटलाल जी थोड़ा जोर से बोलते, जमनालाल जी, 1,00,000 रुपए, वो 6 महीने पहले. अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लाइन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है. तो बीच में से ऑपरेटर बोलता है, अरे लाइन तो क्लियर है, मुझे तो पूरी पूरी सुनाई दे रही उसकी आवाज. तो जमनालाल बोलता है, तुझे सुनाई दे रही, तू दे दे 1,00,000. अर्थात क्लैरिटी आते ही जिम्मेदारी आ जाती है. तो बेचारा ऑपरेटर को लाइन क्लियर सुनाई दे रही थी, तो जिम्मेदारी उस पर आ गई. हम अक्सर गैर जिम्मेदार कब होते हैं? When do we become irresponsible? When things are ambiguous. एम्बिग्युस का अर्थ क्या है? जब हमारे जीवन में स्पष्टता के बजाय अस्पष्टता हो, ठीक से चीजें क्लियर नहीं है. तो जैसे कि बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं इस विषय में, कि जब हम स्पष्टता और अस्पष्टता की बात करते हैं तो कौन से स्तर पर हम इसका अनुभव करते हैं. जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले दर्पण का उदाहरण दिया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम. ये जो प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो. परंतु वो अंतिम शब्द है इस श्लोक के, इस श्लोक की शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो हमारा चित्त है, जिसकी तुलना वो दर्पण से करते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने लिया है, दर्पण का उदाहरण। एकमेव प्रयोजन दर्पण का है, जो भी उसके सामने आए उसे उसी की तरह रूबरू उसको दिखाए जैसे कि वो है, एज इट इज। अब ये अलग बात है कि अक्सर दर्पण यदि फॉल्टी हो, कई होते हैं ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स जो बनाए उस तरीके से जाते हैं, कई आप इसमें जाओगे कोई अम्यूजमेंट पार्क्स में, वहां पर होते हैं ये ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर्स, उसके सामने आप खड़े हो, कोई पतला व्यक्ति भी इतना मोटा लगेगा और मोटा व्यक्ति भी इतना पतला लगेगा। तो जो बहुत मोटा व्यक्ति है वो उस दर्पण के सामने अगर पतला लगे तो बहुत खुश होता है, कम से कम एक जगह तो है मैं पतला लग रहा हूं। और जो पतला है वो मोटा दिखाई देने लग जाए, चिंता में चला जाए। तो कोई हर्षित हो रहा है, कोई चिंतित हो रहा है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, यहां प्रॉब्लम दर्पण में है। परंतु प्रामाणिक दर्पण जो होता है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्टलेस मिरर, तब प्रॉब्लम कहां दिखाई देती है? गौर से देखा मैंने आईना, गौर से देखा मैंने आईना, पता चला मेड इन चाइना। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मार्जनम की आवश्यकता है। दर्पण में कोई खराबी नहीं है, और उस व्यक्ति में भी कोई खराबी नहीं है, तब प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा है? धूल, दो धूल जमी हुई है उस दर्पण के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु शुरुआत में ही बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग व्यावहारिक है, न तो तुम्हें दर्पण को खत्म करना है, न व्यक्ति को, धूल हटानी है। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति योग, बैलेंस्ड अप्रोच। तो क्यों प्रतिबिंब नहीं दिख रहा? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि धूल जमी हुई है। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है लालटेन का। लालटेन की जो लौ है रोशनी, अब दर्पण जो है वो स्वयं को देखने के लिए लालटेन इस्तेमाल किया जाता है कि आसपास जो अंधेरा है उसे देखने के लिए। तो ये जो लॉ है इसकी तुलना मन से की गई है कि लालटेन में जो कालिख जमा होती है, आजकल तो खैर इतना इस्तेमाल नहीं होता है शहरों में, गांव में आप देखो लालटेन को रोज साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो लॉ है वो थोड़ी सी यहां वहां डगमगा जाए तो उसके वजह से वो जो कांच है उस लालटेन का, उस पर कालिख चढ़ जाती है, सूट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हमारा मन जो है उस लॉ के समान है, उस मन को जब हम कंट्रोल में नहीं रखते तब सब कुछ धुंधला या सब कुछ अंधेरा कालिख दिखती है। तो ये उदाहरण लालटेन और लालटेन की रोशनी का। तीसरा उदाहरण कोहरे का दिया गया है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्त्स्नेय निहारम इव भास्कर। निहार कहते हैं फॉग, कोहरे को, भास्कर है सूर्य। तो ये कोहरा जब किसी बद्ध जीव के जीवन में चाह जाता है, जैसे हम देखते हैं कि कोहरे के समय कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि संभल संभल के कदम लेना पड़ता है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। और वो कोहरा छट जाता है कब? जब सूर्योदय होता है। तो इसलिए सूर्योदय की तुलना की गई है केवला भक्ति से। केवल भक्ति और केवला भक्ति दोनों में समानताएं भी हैं और अंतर है कि हमें एकनिष्ठ भक्ति करनी है, वो है केवला भक्ति। और केवल भक्ति से ही ये जो कोहरा है ये दूर होगा। चौथा उदाहरण जो कैमरा होता है, जैसे हमारा यहाँ पर ये इतना कीमती कैमरा है, 2.5-3 लाख का ये कैमरा है और इसमें इतने फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स तो पता भी नहीं होते हमें कि क्या क्या है इसके अंदर। इतने फीचर्स इसके अंदर, परंतु एक फीचर है सामने का लेंस फोकस। वो फोकस यदि ठीक नहीं किया गया तो कितने भी सारे फीचर्स हों उस कैमरा के किसी काम के नहीं है। वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होगा, वो कैमरे जैसे फोकस सामने होता है और उसके पीछे सब कुछ होता है, तो वैसे हमारे जीवन में पीछे सब कुछ बहुत आलीशान और कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ चल रहा होगा, परंतु सामने का फोकस ठीक है तो बाकी सारी चीजें जो हैं हमारी जिंदगी में वो किसी काम की हैं फिर, नहीं तो सब कुछ धुंधला दिखाई देगा, पूरा रिकॉर्डिंग, लाइफ का रिकॉर्डिंग धुंधला रहेगा और फिर हमें लगेगा कि अरे क्या फायदा इतना कीमती कैमरा लेकर भी। तो इसलिए ये जो चार उदाहरण यहां पर, इनसे हमें यही समझ में आ रहा है कि हमारे जिंदगी में जब तक स्पष्टता नहीं आती, क्लैरिटी नहीं आती, तब तक हम कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में तो दूर की बात है, हमारे स्वयं के आंदोलन में समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से भी कोई योगदान हमारा ठीक से नहीं हो पाए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सृष्टि की शुरुआत। यहां है ब्रह्मा जी जो सर्वप्रथम, जिनको निर्माण किया भगवान श्री कृष्ण उन्होंने। तो जो पहले भगवान सृष्टिकर्ता हैं और भगवान ने वो उत्तरदायित्व सृष्टिकर्ता का, या हम कहें फ्रेंचाइजी, ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी जैसे ही अब नाभि से उत्पन्न हुए, नाभि से जो कमल के पुष्प के ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु के, तो ब्रह्मा जी अब कंफ्यूज्ड, क्लैरिटी नहीं उनके अंदर कि मैं कौन हूं और क्यों मेरा निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मा जी की शुरुआत जब होती है तो उन्हें तप ये दो शब्द सुनाई देते हैं। इसलिए ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में स्पष्टता की शुरुआत कहां से होती है? श्रवण से। श्रवण से स्पष्टता की शुरुआत होती है। तो ब्रह्मा जी जिनको ये उत्तरदायित्व तो मिला है कि वो ये पूरी सृष्टि का निर्माण करें, और सृष्टि का निर्माण क्यों? क्योंकि हम जो बद्ध जीव हैं वो चाहते हैं कि हम भगवान से अलग होकर एक अपना साम्राज्य खड़ा करें, भगवान से अलग होकर हम कोई आनंद की अनुभूति करें। तो अब यदि देखिए, कोई भी सृष्टि का निर्माण होता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है, पहले उसका प्रयोजन सामने रखते हो कि उसका प्रयोजन क्या है। वही कपड़ा है, यदि उसको पहनना है तो अलग प्रकार से उसकी सृष्टि होगी। वही कपड़ा पोछे के रूप में इस्तेमाल करना है, अलग प्रकार से उसकी सिलाई बुनाई होगी। तो अब जब हम ये चाहें कि हमें भाई भगवान को भूलना है, क्योंकि भोग यदि करना है तो सेवा भाव भूलना होगा, जो आराध्य हैं उनको भूलना होगा तब जाकर। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने हमारे अंदर जो क्लैरिटी थी, उस क्लैरिटी को दूर करने के लिए, या अर्थात हम ये कहेंगे कि स्पष्टता को अस्पष्टता में लाने के लिए, उन्होंने ये माया का निर्माण किया। तो अक्सर हम ये जब प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है 6x6 मेरा आईसाइट है, चश्मा नहीं है, सब कुछ ठीक से दिखता है, दूर का भी पास का भी, तो फिर जीवन में इतनी अस्पष्टता क्यों है? तो इसलिए कहा गया है यू मे हैव द बेस्ट आईसाइट बट ब्लाइंड इन विजन, क्योंकि आंखें कुछ देखती होंगी और विजन का अर्थ है जो हमारे अंदर की चेतना देखती है, उसको कहते हैं विजन। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में ये 5 प्रकार के जो मोह है उनका निर्माण किया, और ये क्या है, ये हमारे जीवन में धुंधलापन लाते हैं। तो यदि ये समझ में आ जाए कि अस्पष्टता क्या है, तब जाकर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इफ यू कम टू नो व्हाट इज दी इम्प्योरिटी और एम्बिग्यूटी, देन यू कैन यूज दी नेसेसरी मेडिसिन। तो सबसे पहला इल्यूजन, जिसको कहा है तमस, विष्णु पुराण में इसकी इन 5 की व्याख्या हुई है, 5 इल्यूजन्स की व्याख्या हुई है। तो तमस का अर्थ है इग्नोरेंस ऑफ वन्स ओन सेल्फ। अब देखिए, हम लोग विशेष रूप से जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को कितनी दफा याद दिलाना पड़ता है हमारे मनुष्यत्व को, है ना? अक्सर आपने सुना होगा कि जब मनुष्य अपने मनुजता को खो बैठता है तब ये सारे शब्द सुनने में आते हैं, अरे कम से कम इंसानियत तो रखो, है ना? किसको कहा जाता है? इंसान को कहा जाता है इंसानियत तो रखो। अब आप देखो कि कभी कुत्ते को नहीं कहा जाता है कि कुत्ता ही रखो, या गधे को नहीं कहा जाता है कि तुम्हारी गधाई रखो, बनाए रखो। एक कुत्ता और एक गधा या कोई भी जानवर, वो अपने सेल्फ में जीता है। केवल एक इंसान है जिसको बार बार बताना पड़ता है इंसानियत रखो। क्यों? क्योंकि इंसानियत छोड़कर वो बाकी सारी चीजें करना प्रारंभ करता है, इंसानियत को छोड़कर। अब ये अजीब ये मनुष्य है कि जब इसको जानवर बोलो तो बिचक जाता है, मुझे जानवर बोलो, और उसको जब बोलो तुम शेर हो तो फक्र महसूस करता है। तो शेर क्या है? वो भी तो जानवर ही है। तो यहां पर देखिए, ये जो तमस हमारे अंदर है ये कितना, और जैसे कलयुग अब अपनी प्रगति के पथ पर है तो कलयुग की प्रगति इंसानियत की दुर्गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। इसलिए बहुत सुंदर एक रचना है इंसानों के विषय में कि आधुनिक इंसान आधुनिक मनुष्य को देखकर कुछ पशुओं ने क्या किया। सांप, सांपों ने जब इंसानों को देखा तो सांप एक दूसरे से कहने लगे कि चलो छुट्टी का जमाना हमारे लिए आ गया, क्योंकि इंसान ही इंसान को डस रहा है, हमें डसने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंसान ही इंसान को डस रहा है। स्नेक्स वेंट ऑन अ वेकेशन सीइंग दैट वन ह्यूमन बीइंग इज स्टिंगिंग द अदर वन। गिरगिट, गिरगिट जो है वो आत्महत्या के वर्ज पर आ गया, क्योंकि गिरगिट ने देखा कि मैं इतने रंग नहीं बदल सकता जितने इंसान बदलता है। तो उसने अपने सुइसाइड नोट पे लिख दिया गिरगिट ने कि मेरे आत्महत्या का कारण क्या है, इस रंग बदलती दुनिया में अब मेरा क्या काम। तो सांप छुट्टी पर हैं, गिरगिट आत्महत्या कर रहे हैं। कुत्ते, कुत्ते जो हैं वो कंफ्यूज्ड आईसीयू में एडमिट हैं। कुत्ते आईसीयू में एडमिट हैं क्योंकि कुत्ते सोच रहे हैं कि अरे इंसानों की तरह हम तलवे नहीं चाट सकते। और गिद्ध, वल्चर, गिद्ध जो है उसने अपनी उड़ान छोड़ दी क्योंकि गिद्ध देख रहा है कि अरे हम इन इंसानों के सामने कुछ नहीं, इनको आता है नोचना, हम क्या इनके सामने नोचेंगे। तो डसना, तलवे चाटना, नोचना, रंग बदलना, ये सब हमने बखूबी सीख लिया कि जो जानवर इसके लिए बनाए गए वो बेचारे हाथ ऊपर कर दिए कि इंसानों के मुकाबले हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ वंस सेल्फ, हम सबसे पहले यदि क्लैरिटी रखें हमारी स्वयं की जो पहचान है। तो देखिए इसका सीक्वेंस, ये पांचों का सीक्वेंस क्या है। तमस के पश्चात फिर मोह। व्हेन यू आर इग्नोरेंट ऑफ योरसेल्फ देन यू गेट इनटू द बॉडीली कॉन्सेप्ट। और ये बॉडीली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सब पैदा हुए एक समान, सबका रक्त लाल, वही सारे अंग जहां जहां पर स्थित हैं सभी के वही। फिर हम देखते हैं नाम, मजहब इत्यादि, ये सारी पहचान हमारी बनती रहती है, बनती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तो सांसें चल रही हैं, नाम नहीं मिला है, और मृत्यु के समय नाम रह जाता है, सांसें चली गई अब। और ये जो पहचान है, या चाहे नाम हो, या हम किसी प्रांत के हो, किसी देश के हो, ये सारी हमारी जो पहचान है ये परिवर्तनशील है। इसके अंदर इतने परिवर्तन हैं कि वो जो नाम है वो नाम भी खोता रहता है। कि कोई जब शरीर छोड़ देता है तब उसे केवल एक शव कहा जाता है, वो नाम भी चला गया, वो जो भी पहचान थी वो पहचान भी उसकी चली जाती है। और फिर हम देखिए कि अलग अलग प्रकार कि इन पहचानों को इतना बढ़ाते रहते हैं, इतनी अस्पष्टता लाते रहते हैं इस बॉडीली कंसेप्ट के चलते। जैसे कि ये जो क्रिकेट मैच है, जब क्रिकेट मैच कोई देश देखता है तो क्या वो पहचान कि ये मेरा देश खेल रहा है, ये पराया देश खेल रहा है। और खेल में आनंद लेने से ज्यादा, एक हमारे भक्त बता रहे थे कि पहले वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, तो एक बार वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा था, कोई न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे ऐसे कोई मैच चल रहा था, तो ये बैठे देख रहे थे न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे चल रहा है और कोई आउट हुआ, अचानक दर्शकों में इनके बगल में जो दर्शक बैठा हुआ था चिल्लाने लगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इसने कहा, अरे पाकिस्तान तो खेल भी नहीं रहा है, यहाँ पे तो जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड है। नहीं, अंदर जो आक्रोश है वो किसी न किसी प्रकार से बाहर आना है, कोई कनेक्शन नहीं है वो पाकिस्तान का उससे, उस मैच से। तो क्यों? क्योंकि वो पहचान बना ली। चाहे वीडियो गेम भी क्यों नहीं खेल रहा हो कोई, आजकल वीडियो गेम में भी क्रिकेट होते हैं, वीडियो गेम में भी सब कुछ होता है। मैं एक बार जब वहां था यूके में, तो उधर एक परिवार में बच्चे वो आए, हमको सुना आप टेनिस खेलते थे, आइए आपको हम एक अनोखा टेनिस खिलवाएंगे, तो वीडियो गेम वाला टेनिस। तो मैंने देखा वो वीडियो गेम वाला टेनिस है, स्क्रीन के ऊपर आपको खेलना है, आपको हाथ में दे देंगे उसके कंट्रोल्स। लेकिन उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि नहीं, आपकी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी पहले, तो उस वीडियो गेम के अंदर एक आपका चेहरा, आपका नाम, ये सब कुछ बनाया जाता है कि आप ये हो, ये शख्स हो, ये आपका नाम है, या आप ऐसे दिखते हो, और फिर ये। तो देखिए वहां पर भी बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान के वो गेम में मजा नहीं आता है। तो चाहे वो कोई खेलकूद हो, चाहे वो हमारे जिंदगी का खेल हो, हर इसमें हम एक पहचान पकड़ते हैं। उसके पश्चात जब बॉडीली कॉन्सेप्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ वन सेल्फ, तब मैड फॉर एंजॉयमेंट, जिसे कहते हैं महामोह। अब इसके विषय में तो हम सब अनुभव कर ही रहे हैं, इसके विषय में क्या हम विस्तार करें कि बॉडीली कॉन्सेप्ट के वजह से एंजॉयमेंट। अब देखिए ये जो एंजॉयमेंट है ये हर एक शरीर में उसके शरीर के अनुसार उसका एंजॉयमेंट होता है। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य शरीर के एंजॉयमेंट का जो लिस्ट है उसी में वो भोग ढूंढता है, एक दूसरा पशु जो है वो उसी में भोग ढूंढता है और उसको उसमें आनंद, उसमें सुख मिलता है। इसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने निर्माण किया कि जब वो जो एंजॉयमेंट है वो एंजॉयमेंट फ्रस्ट्रेट होता है, वो तो होने ही वाला है, क्योंकि उसको बनाया बाय डिफॉल्ट, हर एक सुख को इस प्रकार से बनाया है कि उसके अंदर दुख छिपा है, आना ही है, वो दुख आना ही है। तो इसलिए एनवी, फिर जब मैं भोग नहीं सकता तब भगवान को भोग करते हुए देखता हूं या सुनता हूं तो अंदर द्वेष की भावना। अर्थात बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम किसी दूसरे मनुष्य को भी कोई भोग करता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसी ईर्ष्या की अग्नि जलती है, क्योंकि उसके अंदर हम भगवान श्री कृष्ण जो कि परम भोक्ता है उसका अंश देख रहे हैं। तो प्रभुपाद कहे ओरिजिनल एनवी इज विद कृष्णा, इवन एथिस्टिक पीपल आर एनवियस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णास एंजॉइंग प्रोपेंसिटीज। जैसे पुराणों में एक कहानी है, एक व्यक्ति था जो कि ईर्ष्या का मूर्तिमान स्वरूप था। ये होते ना हर के मूर्तिमान स्वरूप, तो ये ईर्ष्या का मूर्तिमान स्वरूप था ये व्यक्ति। इसका नाम था खलराज, नाम भी इसका देखिए खलराज, ईर्ष्या का मूर्तिमान। जहां पर भी जाता इसको कोई भी किसी की तरक्की या शांति पसंद नहीं थी, किसी के भी जीवन कोई भी शांति सुखपूर्वक रह रहा है प्रेम पूर्वक नहीं, उसको पसंद नहीं था। तो एक गांव जहां पर सभी आपस में घुल मिलकर स्नेह पूर्वक रहा करते थे, तो इसको सहन नहीं हो पा रहा था इस खलराज को कि सब लोग इतने खुश कैसे हैं यहां पर। तो उस गांव में सभी इतने खुश, परंतु एक उस गांव में उन सबकी समस्या थी, और कोई समस्या नहीं थी, पानी भी था भरपूर। एक ही समस्या वहां पर कि उस गांव को लगकर एक जंगल था, और उस जंगल में खूंखार शेर रहा करता था, और ये शेर का डर हर समय गांव वालों को थोड़े दुख में रहते थे ये लोग उस डर के वजह से। तो अब इसने देखा, ये खलराज जब इस गांव में आया तो इसने इस गांव में देखा सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, कोई किसी से द्वेष नहीं कर रहा है, कोई स्पर्धा नहीं है, सब लोग इतने स्नेह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। नहीं, इसको सहन नहीं हुआ, क्या करूं मैं कि इनके अंदर मैं कुछ ऐसी दुखद चीज घटना इनके अंदर लाऊं। तो एक ही उपाय, ये क्या किया, अब उस जंगल की ओर जाने लगा। जब इसे पता चला कि उस जंगल में एक खूंखार शेर है तो जंगल की ओर जाने लगा। तो इसको जब रोका, गांव वालों ने रोका, कह रहे भाई तुम क्या कर रहे हो, वो जंगल में वो खूंखार शेर है, हम कोई वहां पर जाते नहीं, वो खा जाएगा तुमको, यही तो मैं चाहता हूं, यही तुम चाहते हो, शेर के द्वारा तुम खाए जाना चाहते हो। हां, वो शेर जब मुझे खा लेगा तो वो शेर इंसान का खून चख लेगा और फिर वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और तब मैं स्मशान में जलता जलता मेरे अंदर ठंडक आएगी। क्या ठंडक आएगी कि देखो मरते मरते मैंने इनके जीवन में ऐसा उपद्रव पैदा करके गया। इसको बोलते हैं मूर्तिमान ईर्ष्या का स्वरूप, खलराज। अपना जीवन बलिदान करना चाहता है ईर्ष्या पूर्ति हेतु। अब इसके पश्चात अंतिम है अंध तामिश्र। तो अंध तामिश्र है जब ये भ्रम में कोई जीता है कि मरने के पश्चात अगला जीवन है ही नहीं, यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत। वजन नाप नाप कर क्या करना है, एक दिन तो सबको मरना है। वजन नाप नाप कर क्या करना है, एक दिन तो सबको मरना है। खा पी कर ऐश कर प्यारे, अगले जन्म फिर 3 किलो से शुरू करना है। तो बस ये जो सिद्धांत है कि मरते दम तक ऐश करते रहो, ऐश करते रहो, ऐश करते रहो, तो वो सुनना नहीं चाहते। इसलिए कई वो ऐसे फिलॉसफी को अपने जीवन में अपनाते हैं। कौन सी फिलॉसफी को अपनाते हैं कि जो फिलॉसफी ये बताए कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं अंधतामिश्र। अब ये सब कुछ जब निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, उसके पश्चात ब्रह्मा जी वो स्वयं इतने असंतुष्ट हुए कि उन्होंने अपने उस शरीर को त्यागा। क्योंकि बद्ध जीव को अस्पष्टता में डालने के लिए ये सारे मोह निर्माण किए गए थे। तो जब उस कुत्सित शरीर को ब्रह्मा जी ने त्यागा तो यक्षों और राक्षसों ने ब्रह्मा जी का वो शरीर लिया और वहां से रात्रि या अंधकार का निर्माण हुआ इन यक्षों और राक्षसों। और जैसे ही ये उत्पन्न हुए तो ये ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, स्पेयर हिम नॉट ईट हिम, ऐसे बोलते हुए भागवत में ये सारे ऐसे श्लोक हैं कि ब्रह्मा जी के पीछे भाग रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी एक और अपना शरीर त्यागे तो वहां से कुछ और अन्य असुर उत्पन्न हुए और वो ब्रह्मा जी के साथ वो शारीरिक संबंध रखना चाहते थे। तो एक खाना चाहते थे, एक शारीरिक संबंध रखना चाहते थे। ब्रह्मा जी सोचिए, ये क्रिएशन की शुरुआत है और ब्रह्मा जी किससे बने हुए हैं, केवल बुद्धि से बने हुए। कितने सर हैं? 4, और चारों में बुद्धि है। हमारे एक में नहीं होती, उनके चारों सरों में और सबको जो बने हुए बुद्धि के ब्रह्मा जी। और इतना होने के बावजूद इतने बड़े क्रिएटर ब्रह्मा जी हुए, इससे ये समझ में आता है लेसन क्या है। मेनी टाइम्स यू विल फाइंड दैट योर ओन क्रिएशन विल ट्राई टू किल यू द क्रिएटर। तुम्हारे ही द्वारा पैदा किया गया जो क्रिएशन है, जो सृष्टि है, वही तुमको खाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी के विषय में उनका यदि हम गुणगान करते हुए देखें तो ब्रह्मा जी ने उनकी काबिलियत दिखाई और कॉम्पिटेंस के साथ डिपेंडेंस। फिर वो भगवान के पास गए याचना करते हुए कि आप ही कृपया बचाइए, मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। तो ब्रह्मा जी वो स्वयं क्लैरिटी चाहते थे, इसलिए तीसरे स्कंद में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के जीवन में क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें करना क्या है। तो ही वॉज कॉम्पिटेंट बट ही वॉज नॉट हैविंग क्लैरिटी। सो वेन यू आर कॉम्पिटेंट बट नो क्लैरिटी, देन यू शुड हैव डिपेंडेंस, जो कि बहुत मुश्किल है। कॉम्पिटेंट पीपल दे नेवर वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट एंड दे नेवर वॉन्ट टू एडमिट दैट देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, थिंग्स आर अनक्लियर इन देयर लाइव्स। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में, यहाँ पर तो हम ब्रह्मा जी का उदाहरण लिए हैं, सृष्टि की शुरुआत हुई है, अब हमारे जीवन में हम जो क्रिएशन हैं, हम हमारे जीवन में जब किसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम उस परिस्थिति में क्या अपेक्षा रखते हैं, वहां से शुरुआत होगी हमारे जीवन की क्लैरिटी की। क्योंकि अक्सर जो अब ब्रह्मा जी ने अगर ये 5 प्रकार के इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं तो कोई ये साधारण इल्यूजन्स नहीं है, कोई दूध का धोया पैदा नहीं होने वाला है। दूध से धो भी दो तो दूध भी प्रदूषित है आजकल। तो इसलिए हमें किस चीज की अपेक्षा रखनी है, तो यहां पर हम अब इस मुद्दे पर आए हैं। एक तरफ है सिंपथी, जिसको कहते हैं सहानुभूति, हमदर्दी, और एक तरफ है समाधान। तो हमारी समस्या के एक तरफ है सहानुभूति, एक तरफ है समाधान। तो हम 2 उदाहरण लेंगे, धृतराष्ट्र और अर्जुन का। धृतराष्ट्र और अर्जुन का उदाहरण महाभारत में बहुत ही एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो कि इतना व्यावहारिक है। यदि हम ये दोनों उदाहरण को समझ लें हमारे जीवन में, तो सबसे पहले यदि ये जो 2 स्थितियां हैं, एक है सिंपथी और एक है सल्यूशन। अक्सर हम देखते हैं जब हम पीड़ाग्रस्त होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हम सबसे पहले सहानुभूति एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग वी एक्सपेक्ट इज सिंपथी। नेचुरल है ना, यदि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम जो मुझे जानते हैं फोन कर पूछे तो। उपचार नहीं कर पाएंगे वो लोग, मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि कम से कम फोन कर पूछें क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे हो, ये कोई एक मैसेज तो आए। सहानुभूति, कभी भी आप देखो एक्सीडेंट होता है, विशेष रूप से इंडिया में जब एक्सीडेंट होते हैं तो जो ज्यादा घायल पार्टी है उसके प्रति सहानुभूति ज्यादा होती है। यदि कोई 2-व्हीलर है और बड़ी SUV ने टक्कर मार दी है तो सहानुभूति 2-व्हीलर के प्रति होती है। हो सकता है गलती 2-व्हीलर की हो। जैसे बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 97 की ये बात है, उस समय राधा गोपीनाथ की जो बस पार्टी थी, बहुत लंबी चौड़ी बस थी, ब्लू कलर की बस, पता नहीं आप लोग यहाँ पे कभी वो बस आई क्या, इतनी बड़ी थी कि वो पार्किंग करने में उसको मुश्किल हो रही थी, फिर उनको डिस्पोज करना पड़ा। बहुत बड़ी बस थी वो, बस पार्टी की, उनकी फर्स्ट बस। तो गोविंद प्रभु वो थे बस पार्टी लीडर, और ये जो वाक्या हुआ उनके मुख से, अब यदि आप सुनोगे तो वो कभी भूले नहीं है इसको। तो वो लोग मेरे ख्याल से पूना साइड कहीं से आ रहे थे, और गणेश चतुर्थी का दिन था, और एक जीप में करीब 8 से 10 लोग पूरा शराब पिए हुए, और हेड ऑन कोलिजन हुआ, 7 लोग ऑन द स्पॉट मर गए उस जीप के, ऑन द स्पॉट मर गए, और 3,000 आसपास के गांव के लोग आ गए, इकट्ठा हुए, और वो अब जो बस वाले थे उनको मारने ही वाले थे, सारे ब्रह्मचारी थे, लेकिन सैफ्रॉन देखकर वो रुक गए, गाली गलौच करने लगे। उन्होंने सुना भी नहीं कि गलती किसकी थी, तुरंत हमदर्दी कहां गई, हमदर्दी कहां गई जो कि विक्टिम है। परंतु ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो विक्टिम बने क्यों। ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि एक तरफ है दैव और एक तरफ है कर्म। तो यहां पर हम जो उदाहरण ले रहे हैं, ये उदाहरण ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दैव और कर्म का, कि अक्सर देखो एक धारणा बन जाती है धीरे धीरे। जैसे ये एक्सीडेंट में जो धारणा बन गई, जिसकी भी गाड़ी आलीशान है उसकी गलती है। हाँ? और जो भी साधारण गाड़ी चलाने वाला है वो हर समय हमदर्दी का रेसिपिएंट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं नॉट ऑल वेल्दी पीपल आर नैस्टी एंड नॉट ऑल पुअर पीपल आर इनोसेंट। केवल वो गरीब है इसलिए मासूम है, इसलिए ये मत समझो। और वो केवल अमीर है इसलिए वो बदमाश होना चाहिए, ये भी गलत है। जैसे मैं हाल ही में एक महिला, उनका एक टेड टॉक सुन रहा था, बहुत ही ये हृदय मर्मी टेड टॉक है इनका। ये है एक मिस सुनीता कृष्णन। तो ये जब 15-16 साल की थी तो 8 पुरुषों ने इनका बलात्कार किया। She was gang raped। और ये कहती हैं कि वो जो गैंग रेप मेरा हुआ वो तो एक बहुत बड़ा मेरे जीवन का सदमा, बल्कि उससे ज्यादा जब मेरा गैंग रेप वो उन्होंने किया तो उन्होंने मुझे मुंह पे कहा यू डिजर्व दिस, तुम इसके लायक हो। तो ये सुनीता कृष्णन, इन्होंने इस सदमे को, अपने जीवन की इस घटना को किस तरीके से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो ऐसी महिलाओं को जाकर मदद करेंगी जो कि ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं। तो ये उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। तो बहुत कुछ उन्होंने किया है अब तक, बहुत से ऐसे जो वैश्याएं हैं उनको वैश्याघर से मुक्त कराकर उनको सही काम धंधा दिलाया है, उनके घर बसाए हैं। परंतु इन सारी चीजों में उन्होंने एक चीज अनुभव की, उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने शुरुआत किन से की, वैश्याओं को जाकर मदद करना, उससे शुरुआत की वैश्याघर में जाकर। तो जब वो वैश्याघर में जाती तो वहां ये सारी वैश्याएं इस महिला को दुत्कार कर निकाल देती। तो इसे आश्चर्य हुआ कि मैं मदद करने जा रही हूं और मुझे ये लोग ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हूं। और वो जाकर उनको बोलती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, परंतु फिर भी ये वैश्याएं कोई विश्वास नहीं करती इनकी बातों के ऊपर। तो जब इसने खोजबीन की पता लगाया तो इसने कहा, अपने उस टॉक में कहा, व्हेन यू सी अ प्रोस्टिट्यूट, किसी वैश्या को जब कोई देखता है तो तुरंत जो पुरुष वर्ग है पुरुष वर्ग को दोषी ठहराया जाता है कि पुरुष वर्गों के वजह से ये वैश्याएं हैं। परंतु उसके रिसर्च में उसको पता चला ये सारे वैश्याओं ने रिवील किया 95% ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स वर पुट इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बाय वेमेन नॉट मैन। मैन वर सिंपली द कस्टमर्स। अब ये नहीं कि वो लोग जस्टिफाइड हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, बट इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था इन वैश्याओं को, क्योंकि इन सब ने कहा कि तुम जैसे औरतों ने ही हमें ऐसे धंधों में लगाया है। तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ जाना चाहिए फेस वैल्यू देखते हुए। उसके पीछे हमारे मंथन का ये टॉपिक था, देयर इज ब्लैक एंड देयर इज व्हाइट एंड देयर आर मिलियंस ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो धृतराष्ट्र और अर्जुन, तो महाभारत का युद्ध जब हो चुका था, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए और अब धृतराष्ट्र सोचिए किस अवस्था में, जो इतना आसक्त था अपने पुत्रों में और उनके जीवित रहने में, उनके विजयी होने में, ये धृतराष्ट्र इस पीड़ित अवस्था में, संजय कौन है? संजय सारथी, संजय जो कि एक प्रकार से सेवक धृतराष्ट्र के, तो संजय को जब धृतराष्ट्र बुलाता है तो संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, पूछता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। प्रश्न अक्सर बाद में पूछते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले संजय बोलते हैं, संजय कहते हैं क्यों हुआ, संजय बोलते हैं। और यहां पर संजय की प्रतिक्रिया है कि संजय बहुत ही कटु शब्द धृतराष्ट्र को कहते हैं, उठाने के लिए धृतराष्ट्र को। तो संजय कहते हैं कि जो कुछ हुआ है आपके जीवन में, यह है असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कुछ हुआ है आपके जीवन में उसके कारण भी आप हो, परिणाम भी आप हो। बहुत सुंदर महाभारत में ये संजय के शब्द, यू आर द कॉज यू आर द इफेक्ट, कारण भी आप परिणाम भी आप, जल्लाद भी आप गुनहगार भी आप। होता है ना, गुनहगार कोई और होता है, जल्लाद जो उसको मारता है वो कोई और होता है। संजय कहते हैं दोनों तुम ही हो। और जब ऐसे वचन धृतराष्ट्र सुनता है तो धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा कांपने लगता है। तब विदुर, महात्मा विदुर आते हैं। तो महात्मा विदुर फिर वो धृतराष्ट्र को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए कि फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही ओवरडोज हो गया लगता है। तो विदुर कहते हैं फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से, विदुर कहते हैं कि देखो, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, सुख का गंतव्य स्थान दुख है। तो इस प्रकार से फिर वो जो फेमस स्टोरी है ना कि एक व्यक्ति के पीछे वो शेर लग गया, फिर वो कुएं में गिरा और दो चूहे, एक काला और एक सफेद। तो ये विदुर सुनाते हैं, इस समय विदुर सुनाते हैं धृतराष्ट्र को ये कहानी सुनाते हैं कि कैसे सब कुछ, सब प्रकार की विपत्तियों से घिरा हुआ वो एक शहद की बूंद के पीछे लालायित होता है, इसको कहते हैं मोह। तो तुम इस मोह से बाहर आओ, ऐसे करके थोड़ा बैलेंस्ड विदुर समझाते हैं। ये सब कुछ फिलोसॉफिकल और संजय के कटु वचन सुनकर धृतराष्ट्र वहां पर बेहोश गिर जाता है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र सल्यूशन नहीं चाहता था। क्या धृतराष्ट्र चाहता था? केवल सहानुभूति। धृतराष्ट्र वॉज नॉट लुकिंग फॉर सल्यूशन। उस समय व्यासदेव जी आते हैं और व्यासदेव जी फिर धृतराष्ट्र को वो खड़ा करते हैं, होश में लाते हैं। और व्यासदेव जी कहते हैं धृतराष्ट्र को कि देखो धृतराष्ट्र, वास्तविक रूप में तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं एक बार स्वर्ग में जब गया था तो वहां पर मैंने कुछ डिस्कशन सुना। और डिस्कशन क्या चल रहा था कि सारे देवता वो विष्णु से पूछ रहे थे कि इतने सारे जो राक्षस बढ़ रहे हैं पृथ्वी पर, जो आतंक मचा रहे हैं, तो इन सब का सफाया कैसे होगा? तब भगवान विष्णु ने इन देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा था, चिंता मत करो, मूर्तिमान कलि जो है वो पैदा होने वाला है और वो इन राक्षसों को एक साथ लाएगा और वो है दुर्योधन। तो जब व्यासदेव जी के मुख से धृतराष्ट्र ने ये सुना कि अरे ये तो दैव निर्धारित था, मतलब मेरा दुर्योधन बुरा नहीं था, तो उसे अंदर ठंडक पहुंची, धृतराष्ट्र को अंदर ठंडक पहुंची। अब देखिए, धृतराष्ट्र की देहात्म बुद्धि और अर्जुन की देहात्म बुद्धि, दोनों में देहात्म बुद्धि देखी गई, परंतु अर्जुन की देहात्म बुद्धि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं की, अर्जुन ने भगवान से सल्यूशन मांगा, समाधान। तो इसलिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ है दैव और एक तरफ है कर्म। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या दैव ज्यादा शक्तिशाली है या कर्म ज्यादा शक्तिशाली है, या कैसे इसे देखना चाहिए। जैसे रामायण में, रामायण में वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम को वनवास जाने के लिए कह दिया गया, दशरथ और कैकेयी दोनों प्रभु श्री राम को वनवास जाने के लिए बोल दिए, लक्ष्मण को जब पता चला, जब लक्ष्मण को यह पता चला तो लक्ष्मण, हम जानते हैं कि लक्ष्मण उनके तेवर कैसे थे, तो लक्ष्मण चिल्लाते हुए प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पिता हैं, इनको आप पिता मानते हो। एक्चुअली मैं केवल ट्रांसलेट कर रहा हूं, लक्ष्मण ने कहा ये जोरू का गुलाम है। लक्ष्मण ने अपने पिता के विषय में कहा ये केवल जोरू का गुलाम है, ये हमारा पिता नहीं है। और फिर लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण कहते हैं आप मैं मुझे अनुमति दो, मैं यहां पर अपना पुरुषार्थ दिखाऊंगा और मैं साबित करता हूं अपने पुरुषार्थ से कि कल राज्याभिषेक आप ही का होगा। उस समय रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं लक्ष्मण, कैकेयी जो मुझे इतना प्रेम करती थी और करती है, दशरथ जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या वो मुझे वनवास भेज रहे हैं? नहीं, कैकेयी और दशरथ मुझे वनवास नहीं भेज रहे, दैव, मेरा दैव है जो मुझे वनवास भेज रहा। तो रामचंद्र जी ने उसे दैव समझा और लक्ष्मण ने उसको षड्यंत्र समझा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि हमें इन दोनों की हार्मनी को देखना है, इसके बैलेंस को देखना है। और इसलिए यहां पर हम जब इसकी चर्चा कर रहे हैं सिंपैथी वर्सेस सॉल्यूशन, तो हमारे जीवन में ये दो प्रकार के शख्स होने चाहिए बैलेंस करने के लिए। इसको मैंने नाम दिया है द रिमाइंडर्स एंड द शेकर्स, जो हमें याद दिलाने वाले ऐसे डिवोटीज हों और दूसरे हों जो हमें झंझोड़ने वाले डिवोटीज हों। थोड़ा मुश्किल शब्द है, झंझोड़ दे, जोल्ट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, दोज हु गिव जोल्ट्स, बोल्ट्स, जोल्ट्स, हिलाए हमें, हिला के रख दिया अंदर से। तो अब देखिए इसमें भी बहुत सुंदर उदाहरण है कि जामवंत, उन्होंने हनुमान जी के साथ क्या किया, जामवंत बिकेम द रिमाइंडर फॉर हनुमान जी कि हनुमान केवल तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। हनुमान जी भूल चुके थे अपनी स्वयं की शक्ति और जामवंत ने याद दिलाया। तो हम जब नए नए भक्ति में आते हैं तो हमें किन को ढूंढना चाहिए, जामवंत को ढूंढना चाहिए मंदिर में कि जामवंत कहाँ है, जो हमारे अंदर की खोई हुई कृष्ण भक्ति की शक्ति को हमें याद दिलाए। और फिर बहुत वर्षों बाद हमें विदुर जैसे महात्मा हमारे आसपास रखने चाहिए कि विदुर, उन्होंने फिर धृतराष्ट्र के साथ क्या किया, सब कुछ खत्म हो गया, अब युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, युधिष्ठिर युद्ध तो खत्म हो चुका, 18 साल बीत गए, युद्ध खत्म हुए 18 साल बीत गए और अब राजगद्दी पर बेशर्मों की तरह धृतराष्ट्र अब भी बैठा हुआ था। तब विदुर आए, वो जो तीर्थयाटन कर विदुर आए, और विदुर ने फिर जब धृतराष्ट्र को देखा तो विदुर अब कोई सहानुभूति के मूड में नहीं थे, कोई फिलॉसफी सुनाने के मूड में नहीं थे, नो पैसिफिकेशन, नो सिंपथी, नो फिलॉसफी, ओनली सर्जरी, कट 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 उन्होंने शुरू किया। धृतराष्ट्र को कहा, लानत है तुम्हारे ऊपर धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म नहीं आती, भीम के द्वारा फेंके हुए टुकड़ों को तुम खा रहे हो। कौन भीम, जो तुम्हारे पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु था, और भीम कैसे खिलाते थे धृतराष्ट्र को, ऐसे सही में दूर से फेंक के लिखा, भीम ऐसे धृतराष्ट्र को खिलाता था। अब जब आप किसी को परोस रहे हो तो पास में जाके परोसोगे ना, भीम ऐसे दूर से फेंकते थे, ले ले, ऐसे भीम खिलाते। ये वर्णन है ऐसे तो। और धृतराष्ट्र, उसे वो राजगद्दी नहीं छोड़नी है, वो राजमहल के ऐशो आराम नहीं छोड़ने हैं, इसलिए बेशर्मों की तरह वो फेंके हुए टुकड़ों को ले लेकर धृतराष्ट्र। तो इसलिए विदुर ने जब देखा तो विदुर ने सर्जरी कैसे की, लानत है तुम्हारे ऊपर धृतराष्ट्र की, तुम्हारे अंदर कोई स्वाभिमान है कि नहीं, अरे तुम्हारे बाल झड़ गए, तुम्हारे दांत नहीं है, तुम अब वृद्धावस्था में, अब तो कम से कम छोड़ो ये आसक्ति तुम्हारी, क्या बचा है तुम्हारे पास, न तो तुम्हारा खुद का कोई परिवार है, न तुम्हारा कोई नाम है, न तुम्हारी कोई हस्ती है, कुछ नहीं है। और ये सब कुछ जब धृतराष्ट्र ने सुना तब फिर धृतराष्ट्र की अकल ठिकाने आई इतने वर्षों पश्चात। तो अब हम क्या सीखते हैं कि हम भक्ति में आते हैं, हाँ जामवंत हमें बहुत इंस्पिरेशन देते हैं, बहुत सारे जामवंत इंस्पिरेशन देते हैं, यस प्रभु कर पाओगे आप, 16 माला आप ही कर पाओगे, मैंने तो नहीं किया, आप कर पाओगे। तो जामवंत जैसे वो इंस्पिरेशन देते हैं, हाँ, और हम 1, 2, 4, 8, 16 सब कुछ, दीक्षा भी हो गई, ऐसे ऐसे प्रगति हो रही, प्रगति हो रही, और फिर जब समस्याएं आती हैं एज अ डिवोटी, जब समस्याएं आती हैं तब यदि हमारे जीवन में हमने लाइसेंस किसी विदुर को नहीं दिया है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सहानुभूति। इसलिए यदि हम भक्तों के समुदाय में केवल सहानुभूति की अपेक्षा करते रहें तो हम धृतराष्ट्र की तरह फेंके हुए टुकड़ों पर ही जिएंगे। इफ वी सिंपली एक्सपेक्ट सिंपथी, नो सोल्यूशन, देन वी विल रिमेन लाइक धृतराष्ट्र। तो कई बार क्या देखा जाता है कि यदि 10 धृतराष्ट्र एक साथ बैठ जाएं और 10 धृतराष्ट्र एक साथ बैठकर क्या चर्चा कर रहे हैं, तेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अच्छा तेरे साथ भी ऐसा हुआ, तेरे साथ भी ऐसा, हम सब दसों के साथ ऐसा ही हुआ। यदि उनके अंदर एक भी विदुर नहीं है तो कर क्या रहे हैं, वो प्रॉब्लम को एज इट इज रख रहे हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। होता है ना, जैसे सासू माँ, बहुत सारी सासू माएँ एक साथ आती हैं, अच्छा तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है, मेरी भी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। कोई अगर उसके अंदर सोल्यूशन ढूंढने वाला नहीं है तो वैसे डिवोटीज, पीड़ाग्रस्त डिवोटीज, अलग अलग प्रकार से पीड़ित डिवोटीज, कोई मैनेजमेंट से पीड़ित है, कोई अपने इंद्रियों से पीड़ित है, कोई मन से पीड़ित है, कोई किसी से पीड़ित है, कोई पूरी भक्ति से पीड़ित है, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति अन्य पीड़ित भक्तों को ढूंढता है खिचड़ी खाते समय। तुझे भी पापड़ नहीं मिला, मुझे भी नहीं। मुझे भी पापड़ नहीं मिला, तुझे भी नहीं मिला। फिर दोनों बेचारे विलाप कर रहे हैं, पापड़ नहीं मिला है। तीसरा भी आता है, वो भी देखता है इसके भी प्लेट में पापड़ नहीं है, दोनों के प्लेट में पापड़ नहीं है, तो वो उनको ही ज्वाइन करता है वो। तो ऐसे जो एक दूसरे को केवल मलम लगाने वाले कि हाँ भाई हमदर्दी जता रहे हैं कि हाँ चलो अच्छी बात है, हमदर्दी कोई बुरी बात नहीं है, सहानुभूति कोई बुरी बात नहीं, परंतु वो सहानुभूति के साथ यदि कोई सोल्यूशन नहीं है, केवल बैठ के रोते रहना मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, तो दूसरा बोलता अरे मेरे मेरा सुनो तुम, अच्छा तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ही साथ, अच्छा हम दोनों के साथ, अच्छा फिर एक ग्रुप बनता है, हम सब जो हैं ये ऐसे पीड़ित हैं, और फिर बनता है JNU। वो नोट्स में नहीं था बाय द वे। तो इसलिए ये जो दैव और कर्म है, सिंपति वर्सेस सॉल्यूशंस। हां, सिंपति और दैव का कनेक्शन है और सॉल्यूशन और कर्म का कनेक्शन है। केवल दैव 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 तो हम केवल सहानुभूति सहानुभूति यदि हमें समाधान, हमारे उस दयनीय स्थिति से बाहर आने के लिए समाधान चाहिए तो हमें एक्शन कर्म करना है। इसलिए जयद्वेत महाराज उनके एक सुंदर एडिटोरियल में उन्होंने ये चार चीजें उन्होंने कही, रिकग्नाइज रिपेंट एंड रिग्रेट रेक्टिफाई एंड देन री यूनियन। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि अब एक तरफ हम देखते हैं कि जो पीड़ित हैं, विक्टिम जो है, और एक तरफ हैं जो कि उनको सहानुभूति देते हैं और उनके साथ साथ समाधान सॉल्यूशन दोनों देने वाले, परंतु यदि दोनों का तालमेल ठीक नहीं है, दोनों में अगर एक्सट्रीम्स हैं कि सहानुभूति और समाधान वो नहीं है और दूसरी तरफ रिग्रेट नहीं है जो कि पीड़ित हैं उनके अंदर, तो अक्सर क्या होता है कि ये जो दो चीजें हैं इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, रिग्रेट के साथ रेक्टिफिकेशन। रिग्रेट मतलब अपने दैव को पहचानना, रेक्टिफिकेशन मतलब कर्म करना फिर, और उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, चाहे कोई अथॉरिटी है, काउंसलर है, जो भी है, वरिष्ठ वैष्णव हैं, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस. इफ देयर इज ओनली फॉरगिवनेस 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 देन द विक्टिम बिकम्स शेमलेस. And if there is no forgiveness and compassion, then the victim becomes hopeless. तो क्या होता है, दो चीजें होती है. Victim becomes shameless if it's only forgiveness. And if there is no forgiveness, victim becomes hopeless. So to avoid being shameless and hopeless, the best combination is regret and rectification should be combined with compassion and forgiveness. And therefore, to conclude our session this morning, simply seeking sympathy without solution is like anesthesia without surgery. भक्तों के समुदाय में जब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, जब हम घायल भक्ति में अपने आप को पाते हैं, यदि हम केवल सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं, और देखिए समाधान सॉल्यूशन को अपने जीवन में अपनाने के लिए नम्रता चाहिए. सहानुभूति से केवल फॉल्स ईगो बढ़ता है. इफ वी सिंपली एक्सपेक्ट sympathy, our false ego will increase. But if we go for solution, then we have to become humble. इसलिए अर्जुन हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए कि उन्होंने भगवान के सामने अपनी परिस्थिति रखी, परंतु भगवान से उन्होंने सहानुभूति की अपेक्षा नहीं रखी. उन्होंने भगवान से क्या, भगवान सर्जरी करो मेरी. इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हां, भक्ति के शुरुआत में हमें जामवंत जैसे भक्त चाहिए जो हमें इंस्पायर करे, प्रेरणा दे, और हर समय हमारे साथ विदुर जैसे शेकर्स होने चाहिए कि हमारी विकट परिस्थिति में वो केवल हमें मीठी मीठी बात बोलकर सहानुभूति ना दिखाएं, बल्कि हमें हिलाकर झंझोड़ दें, हमारे अंदर से हमारे अंतःकरण को वो जगाएं और हमें याद दिलाएं कि समाधान क्या है. और जब समाधान के पथ पर हम चलते हैं, वो शुरुआत है हमारे जीवन की स्पष्टता, क्लैरिटी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जय श्री प्रभुपाद की जय. किसी का कोई प्रश्न? तो एक विशेष अनाउंसमेंट है. अगले महीने अनुभव और उसके साथ साथ लेसन्स, उसका ये कंपाइलेशन है. बहुत ही इन डेप्थ है ये, तो बहुत ही ये एक पावरफुल प्रीचिंग टूल बनने वाला है ये जो बुक है. इसलिए महाराज रिक्वेस्ट किए हैं कि यदि हम इसे एक पर्टिकुलर क्लास वर्ल्ड वाइड में फेमस बनाएं, ताकि ये बुक एक बेस्ट सेलर बन सके प्रीचिंग के लिए, तो प्री ऑर्डर्स हमें करने हैं. तो एक वीडियो हम दिखाएंगे जिसमें महाराज खुद बता रहे हैं इस पुस्तक के विषय में. आपने वीडियो देखा भी होगा, और इसके पश्चात कृष्णधन प्रभु आपको बताएंगे कि आपको ये प्री ऑर्डर कैसे करना है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है.